आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
आउज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समान, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समान, इस वक्त हमारे साथ स्वीडन मालमों की फ़िज़ाओं से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अक्सर अदारा आपकी आवाज़ पर सुनते रहते हैं। सियासतदान हैं, सोशल काम भी करते रहते हैं, कम्यूनिटी में भी रहते हैं, अपनी कम्यूनिटी के लिए भी काम करते रहते हैं। आजकल आपको पता है कि इलेक्शन का ज़ोर है और मालमों स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये रीजन के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, कम्यून के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। एक नई पार्टी बनी है जिसका दावा है कि हम गैर मुल्कियों के हक में काम करेंगे। उनके उम्मीदवार ज़ुबैर हुसैन हमारे साथ मालमों की फ़िज़ाओं से मौजूद है। ज़ुबैर साहब, आपको एक बार फिर अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
जी राजा साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, और आपके प्लेटफॉर्म के तवसल से मैं तमाम सामीन को सलाम कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छे तारुफ का।
ज़ुबैर भाई, आप हमारे सामाइन को पहले तो अपनी पार्टी के बारे में बताएं।
देखें राजा साहब, जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है तो पार्टी तनयांस जो है वो तेजी से जो है वो मकबूल होती जा रही है अकलियतों की नुमाइंदा जमात के हवाले से। पार्टी का क्याम सन 2019 में इसलिए अमल में लाया गया कि स्वीडन में जो है वो रेसिज्म यानी कि इम्तियाजी सलूक बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं ये दूंगा कि स्वीडन की जो सबसे बड़ी तीसरी सियासी जमात है वो स्वीड्स डेमोक्रेट्स यानी कि स्वेरी डेमोक्रेटर ना, वो फॉरेनर्स यानी एमिग्रेंट्स के खिलाफ उनकी पॉलिसी है और वो के खिलाफ चलते हैं। और अभी अगर आप बात करें कि स्वीडन के रेसिज्म की, तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। नाउज बिल्ला कुरान सोजी के वाकयात यहाँ पर हो रहे हैं, और अभी 2 से 3 दिन कबल जो है वो स्टॉकहोल्म में एक वाकया पेश आया जिसके अंदर एक खातून ने एक बुजुर्ग स्याफाम शख्स को धक्का दिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन के, और वो बुजुर्ग जो है वो ट्रेन के नीचे आके ट्रेन के सामने आते आते गिरा, और उसको बाद में ट्रेन को रोक के बचाया गया बुजुर्ग को। यानी कि रेसिज्म काफी हद तक बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए ये इंतहाई जरूरी है कि जो हमारे फॉरेनर्स हैं, जितने भी, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, जितने भी फॉरेनर्स या जितने भी आप ये समझें कि इमिग्रेंट्स बैकग्राउंड लोग जो स्वीडन में रह रहे हैं, चाहे वो पिछले 40 साल से ले रहे हों चाहे 80 साल से रह रहे हों, सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की जरूरत है ताकि हम अपने हकूक की आवाज के लिए जिद्दोजहद करें, चाहे वो मजहबी लिहाज से हो, चाहे वो हमारी जिल्द के रंग के हवाले से हो। तो इस तरह का जो ये नस्ली तासुब भी फैल रहा है स्वीडन नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आराम आराम से जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा होने की अशद जरूरत है, और ये प्लेटफॉर्म हमारी जमात पार्टी तनयांस के नाम से स्वीडन में सामने आया है।
जी ज़ुबैर भाई, आपने बताया अपनी पार्टी में ये वाकयात भी बताए, तो अब आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है, आपका कितना टाइम रह गया इलेक्शन में?
इलेक्शन में लगभग 50 दिन बाकी हैं, 11 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और आपको पता है शायद डेनमार्क और स्कैंडिनेविया में तकरीबन यही सिस्टम है कि आप एडवांस में वोटिंग भी कर सकते हैं। तो हमारी वोटिंग 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, जिसको फोर्थ ही द्रोस्टिंग कहते हैं, यानी कि एडवांस में आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जी,
पिछले दिनों आपने इफ्तिताह भी किया और आपको काफ़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने उस ओपनिंग में हिस्सा भी लिया, और आपके पार्टी फॉर मैन भी जो थे वो भी आपके साथ थे। आपको रिस्पांस कैसे मिल रहा है स्वीडिश कम्युनिटी से और अपनी कम्युनिटी से?
देखें, स्वीडिश कम्युनिटी का जहाँ तक रिस्पांस का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। स्वीडन में कुछ ऐसे भी स्वीडिश हैं जो ये चाहते हैं, और वो समझदार हैं, यानी कि पढ़ी लिखी जो आवाम है उनका जो परसेप्शन है वो इस तरीके से जुदा है कि दुनिया भर में आपको पता है कि इमिग्रेंट्स चीप लेबर यानी कि सस्ते मजदूर के तौर पे हर जगह पे दस्तयाब होता है। तो इनको पता है कि इमिग्रेंट्स अगर आना बंद हो गए तो हमारे मुल्क की जोग्राफियाई लोकेशन काफ़ी बड़ी है और हमारे पास इतनी आबादी नहीं है कि हम जो है कंपनसेट कर सकें मजदूरों को जो हमारे मुल्क में है या यूरोप के दीगर ममालिक से आते हैं। तो इसके लिए इमिग्रेंट्स ज़रूरी हैं, और जो स्वीडिश इमिग्रेंट्स को पसंद करते हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि इमिग्रेंट्स की क्या अहमियत है किसी मुल्क के लिए यूरोप में, वो हमें वेलकम कह रहे हैं और वो हमारे साथ भी खड़े हैं। यहाँ तक कि हमारी इंतज़ामिया में भी चंद एक स्वीडिश शामिल हैं, और अभी जो स्वीडिश जो हमारे मकामी स्वीडिश अगर बात करें बगैर पार्टी के, तो उनकी हमें फुली सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि पार्टी के हवाले से बहुत सारे मामलात नेगेटिव फैलाए जाते हैं, इस वजह से कोई भी स्वीडिश खुलेआम आके हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। लोग ये देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है, हम क्या पोजीशन लेते हैं, या हम वोट लेने में कामयाब होते हैं तो उसके बाद शायद लोग खुल के हमारे साथ खड़े होंगे और आगे चल के हमारी पार्टी का फ्यूचर जो है वो मजबूत होगा। रही बात के मेरे ऑफिस की ओपनिंग हुई, आपको पता है कि स्वीडन में या डेनमार्क में इस तरह का ट्रेंड तो नहीं होता कि आप बतौर कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन ऑफिस का अफ्तताह करें, लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है कि स्वीडन में जो पाकिस्तानी है वो फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी है। हमारे पास अभी तक वही रिवाज या वही कल्चर कायम है जो पाकिस्तान में होता है इलेक्शन के हवाले से, तो उसके लिए जरूरी था कि इलेक्शन ऑफिस का कायम किया जाए। पार्टी के सरबराह मिकेल यूक्सेल ने अपने हाथों से ऑफिस का अफ्तताह भी किया और इसका रिस्पांस बहुत से लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी कैंपेन हुई और इस ऑफिस में हम जो है लोगों को ग्रुप्स की शक्ल में इंतखाबात के अंदर जो है वो हिस्सा लेने के हवाले से, यानी कि वोट किस तरीके से कास्ट किया जाए उसकी मालूमात मुहैया करते हैं उर्दू जबान में। तो ये फकत अब ये समझे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो उर्दू बोलती है वही यहाँ पर शामिल नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एशिया में ममालिक यानी कि भारत की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी बहुत से लोग उर्दू बात करते हैं, तो उनको भी हम जो है अपने प्लेटफॉर्म से मालूमात मुहैया करते हैं और हमारे काफिले को बढ़ाते रहे हैं और मजबूत करते जा रहे हैं। जी
जी अली, आपने ज़ुबैर भाई की आप बात सुनी। अली, आप कोई सवाल करना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे?
जी सबसे पहले तो मैं ज़ुबैर हुसैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी पार्टी का भी जिस तरह भी बता रहे हैं कि दफ्तर की इफ्तिताह की। और सबसे खुशाइन बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि अब स्वीडन के अंदर भी जो पाकिस्तानी नजात जो है वो स्वीडिश है वो सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह हमने डेनमार्क में देखा कि डेनमार्क में भी अब कमून की लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो एक्टिव रहते हैं, हालांकि उतने नहीं जितना के होने चाहिए मेरी नज़र में, मगर फिर भी। तो सबसे अच्छी बात जो है कि स्वीडन में भी इस तरह पढ़े लिखे नौजवान आगे आ रहे हैं जो फर्स्ट जनरेशन से हैं, और जिसका जिक्र अभी किया भी गया कि जिस तरह ट्रेन के आगे एक सियाह फाम शख्स को धक्का दिया गया, और भी बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं जो माइनॉरिटीज की स्ट्रिंग जो है जिससे वो थोड़े से मजहबी तौर के ऊपर या उन्हें एक एहसास कमतरी पैदा होता है उसको वाकयात होते रहते हैं। मेरे ख्याल से उन वाकयात को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म से उजागर करने का एक वाहिद तरीका यही है कि आपकी ऐसे कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस हो, और वो स्ट्रॉन्ग वॉइस की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, इनकी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है कि जिस तरह ये नौजवान आगे आएंगे, और ख़ास तौर पे एक और भी मैं जानता हूँ कि नवीद हैं शायद, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, तो इस तरह अगर ये कुछ लोग आगे आएंगे और वहाँ पे प्रॉपर फोरम के ऊपर जाके इन चीज़ों को उठाएंगे तो ना सिर्फ ये इन इश्यूज के ऊपर बल्कि जो और भी ख़ास तौर पे फैमिली के हवाले से बहुत सारे हम मसाइल देखते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि इन लोगों को स्वीडन के अंदर हैं, तो वो भी उनको भी देख सकेंगे। तो मेरी तो सबसे पहले इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार है कि अल्लाह ताला इनको इनके मकसद में कामयाब करे, इनकी पार्टी को कामयाब करे, ताकि ये अपनी कम्युनिटी की बेहतर रहनमाई कर सकें।
जी जुबैर भाई, आप कोई कमेंट्स करेंगे?
सर बहुत अच्छी बात कही इन्होंने और बिल्कुल इसी तरीके से आज आप समझे कि स्वीडन में कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी नई नहीं है, लेकिन हमने जो है वो आप समझें कि एक नया ट्रेंड लॉन्च किया या नया ट्रेंड लेके आए हैं कि जिसमें लोगों को इस तरफ रागिब किया गया कि आप मकामी सियासत में हिस्सा लें। इससे पहले भी पाकिस्तानी जो है वो मकामी सियासत में हिस्सा लेते रहे कम्यून लेवल पे, लेकिन उनका इदारा कार सिर्फ आप ये समझें कि अपनी जात की हैसियत तक ही होता था, कम्युनिटी को कभी इकट्ठा करके उनके मसाइल के हवाले से कोई काम नहीं किया। अगर आप मेरी या मेरी टीम की बात करें, मैं बेसिकली टीम की बात इसलिए कहता हूँ कि हम यहाँ पर एक फॉरनिंग भी चलाते हैं, पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप, और हमने अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा मसला कश्मीर हो या फलस्तीन हो उसके हवाले से स्वीडिश ऐवानों में जो है वो खतूत भी लिखे और अपनी आवाज को भरपूर तरीके से उठाया भी। कम्युनिटी के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे जो है वो इवेंट करवाए जिसमें पाकिस्तान का सकाफती मेला जो है वो आप समझेंगे सर फहरिस्त है, म्यूजिकल नाइट, कवाली प्रोग्राम, यानी कि हमने मजहबी कौमी म्यूजिकल नाइट्स और इस तरह के जितने प्रोग्राम हैं वो सब करके कम्युनिटी को पाकिस्तानी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे एंगेज रखा। लेकिन फकत पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपने कल्चर में जिंदा नहीं रखना है, हम क्योंकि इस मुल्क के शहरी हैं तो हमें इस मुल्क के कल्चर के अंदर भी अपने आप को जो है इस तरीके से एक्टिव रखना है इस माशरे में कि हमारे जो है वो आने वाली नस्लों को कोई मसाइल पेश ना आए। हम तो शायद इन मसाइल से किसी तरीके से निपट लेंगे, लेकिन आने वाली नस्लें जो है वो शायद उनको और मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो पढ़ी लिखी कयादत, बेसिकली इन्होंने बात अच्छी की कि पढ़ी लिखी कयादत का सामने आना बहुत जरूरी है, और ये पढ़े लिखे लोग ही हैं जो हमारे मसाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो कम्युनिटी मसाइल से हमेशा दूर भागता है, क्योंकि ये हमारी रविश रही है कि कम्युनिटी में जो भी पढ़ा लिखा शख्स आके काम करना चाहता है उसकी करेक्टर असेसिनेशन की जाती है या उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है किसी तरीके से, तो वो कम्युनिटी से पीछे हटते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। तो टॉलरेंस लेवल चाहिए इसके लिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म होता है, तो ये एक नेचुरल सी बात है। अच्छे काम करने वालों पर हमेशा क्रिटिसाइज होता है, उसको बर्दाश्त करके हमें अपने आने वाली नस्लों के फ्यूचर का सोचना है। तो बस यही मैं कमेंट करूंगा कि हमें मकामी सियासत में पढ़े लिखे अंदाज में आना है, और हमें यह साबित करना है कि हम भी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी किसी जो है वो तबके किसी भी लिहाज से या किसी भी पेशे से हम पीछे नहीं हैं। जी
जुबैर भाई, आपका प्रोग्राम हम देख रहे थे कल या परसों, हुआ है कोई फिल्म लगाई गई है उस पर, इसकी ज़रा बैकग्राउंड हमारे सामान के साथ शेयर करें।
देखें, ये स्वीडन की तारीख में पहली बार है कि कोई पाकिस्तानी फिल्म जो है वो एक बड़े पर्दे पे लगी। आपका यहाँ पर स्वीडन का जो सबसे बड़ा सिनेमा है फिल्म स्टादन, उसमें ये फिल्म का जो है हमारा नशर होना या फिल्म की नुमाइश होना, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात साबित होगी फ्यूचर में, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में तो चलती रहती हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी फिल्म को जो है वो जगह दी गई, और अभी तक जो है वो स्टॉकहोल्म में और योतेबोरी में बहुत सी जगहों पर, बहुत से सिनेमाओं में ये फिल्म जो है वो लगी हुई है। जहां तक मालमो की बात करें और हमारे कल के प्रोग्राम की बात करें, तो वो एक किस्म का एक मुनफरिद प्रोग्राम था जिसमें हमने मकामी स्वीडिश और अरब बाशिंदों और दीगर कौमियतों को मधु किया था, और हमने अपने मेम्बरान में और मकामी हलकों में इस फिल्म के टिकट मुफ्त तकसीम किए थे। और खूबसूरत बात आपको ये बताऊं, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन टिकट खरीदने का मौका नहीं मिला, हमने कोई टिकट जो है वो ऑनलाइन नहीं बेचे, तो कोपनहेगन से 5 खवातीन शाम को 6 बजे से सिनेमा में इंतजार कर रही थी कि हमें टिकट चाहिए। तो हमने उनको भी किसी तरीके से एडजस्ट किया, सीट ना होने के बावजूद भी हमने अपनी सीटें छोड़ के उनको बिठाया और हम सिनेमा से बाहर रहे और उनको फिल्म देखने का मौका दिया। तो ये बेसिकली एक ऐसा कल्चर और ऐसा ट्रेंड हमने मुतारिफ करवाया है कि जिससे पाकिस्तान के हर शोबे को प्रमोट किया जाए। बेसिकली पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खिदमत करना बाहर रह के वो यही है कि इस तरह के जो कारोबार हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे थिएटर हो, चाहे आपकी सकाफती विरसे हो, जैसे ट्रक आर्ट के भी पहले हमने प्रोग्राम करवाए हैं, थिएटर शो भी करवाए हैं, तो ये खूबसूरती है कि आप पहले मार्केटिंग के लिए कोई चीज फ्री में दें ताकि लोगों को उसके बारे में पता पड़े और वो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो अपने जेब से खर्च करके सिनेमाओं का रुख करें। तो कल का रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव रहा, और आप ये समझें कि ये एक तरह की मेरी इलेक्शन की कैंपेन भी रही। तकरीबन 200 अफराद जो है वो उस हाल में मौजूद थे, और फिल्म स्टार्ट होने से कबल जो है वो पार्टी इत्नियांस के हवाले से, यानी कि सिनेमा पे जो है हम सियासी जमात का प्रमोशन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने तरीके से हमने सियासत का कुछ इस तरीके से आप समझें कि इश्तिहारी की अपना इश्तिहार दिया कि हमने क्या क्या कम्युनिटी की खिदमात की हैं और हम कहाँ पर किस लेवल पे कैंडिडेट हैं, यानी कि सूबाई, कौमी और शहरी नशिस्तों के लिए मैं उम्मीदवार हूँ उसके हवाले से बताया गया। तो ये एक आप समझे 3 मिनट का रिक्लाम था जिसके अंदर हमने 200 लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया कि हम मकामी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, हमारा और हमारी सियासी जमात का साथ दें। जी
ज़ुबैर भाई, ये तो आपका हो गया प्रोग्राम, हो गया सियासी हवाले से। अगर आपकी सियासी जमात का अपनी ज़बान में तर्जमा किया जाए तो क्या तर्जमा बनता है?
पार्टी इत्नियांस, मतलब ये आप समझे कि एक अपनी जबान में अगर तर्जमा किया जाए कि कोई एक चीज नई, जैसे पो का फटना होता है या शहर जो हो अंधेरे के बाद जो एक शहर आती है, तो ये एक किस्म का न्यांस, एक चीज जो नई आ रही है और नई रोशनी की किरण के तौर पे फैल रही है, तो उसको आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि हम न्यांस हैं, हम कोई एक नई चीजें माशरे को मुनव्वर करने के लिए आए हैं।
ज़ुबैर भाई, पार्लियामेंट में वोटों की तादाद जो है वो मेंबर बनने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है, इसी तरह रीजन में, लेकिन कम्यून में थोड़ी आसानी होती है, तो काफ़ी तादाद में जो है वो कोपर अपना मालमो कम्यून में लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में रहते हैं, तो कम्यून में तो कम अज़ कम चांस जो है बनने चाहिए अपने लोगों को जहाँ जहाँ खड़े हैं।
जी देखें, मसला यह है कि हमारा कोई कलेक्टिव नुमाइंदा नहीं खड़ा हुआ। हुआ यह है कि हमने जो है वो ग्रुप की शक्ल में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में ये किया है कि यहाँ तो हमने एक ही जमात में सेम नशिस्तों पे अपने नुमाइंदे खड़े कर दिए हैं, फिर दूसरी तरफ हमने ये किया है कि दूसरी सियासी जमातों में भी जो है वो हमारे नुमाइंदे जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी के चले गए। तो ऐसा नहीं किया हमने कि हम किसी कलेक्टिव नुमाइंदे को जो है वो सेलेक्ट करें ताकि हमारी कम्युनिटी की कोई रिप्रेजेंटेशन हो। हमने खुद को वही हमारी रविश रही कि हमने ग्रुपों में तकसीम कर दिया है और उससे हमें ये नुकसान होगा कि हम जो है वो अपने आप अपनी कम्युनिटी को भरपूर रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे कहीं पर, और ना ही हमारा कोई कलेक्टिव नुमाइंदा आगे जा सकेगा। तो ये चीज़ें जो है जब तक हमारी कम्युनिटी से ख़त्म नहीं होती तब तक जो है वो हम इन मसाइल का शिकार रहेंगे। माजरत के साथ कुछ ऐसे ही है। जहाँ तक रही बात मेरी अपनी मूवमेंट की या हमारी पार्टी इत्मीनान की, तो हमारा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि हम किसी तरीके से पार्लियामेंट का कोई एक मैंडेट ले लें, रीजन में कोई एक मैंडेट ले लें, या हम जो है वो मालमो कम्यून में मैंडेट ले लें। फिर इन तमाम नशिस्तों पे हमारी जो पार्टी की स्थिरल से है या कांग्रेस है वो बाद में डिसाइड करेगी कि कौन सा जो है बंदा किस लेवल पे काम कर सकता है कि हमारी पार्टी को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। और यानी इसको आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये जहाज होगा तो जहाज में उसी पायलट को बिठाया जाएगा जिसको पता होगा कि किस वक्त कौन सा बटन दबाना है। तो अगर हमने जो है वो किसी अनाड़ी को बिठा दिया तो फिर वो प्लेन ने क्रेश ही होना है। तो हमारी जमात के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड सियासी नहीं है, ना ही वो समाजी तौर पर एक्टिव रहे हैं। अलबत्ता यह है कि एक आप समझे कि मूवमेंट चली है जिसके अंदर हमने बहुत से लोगों को शामिल किया है और जिनकी मदद की बदौलत शायद हम अच्छा सा मैंडेट लेके कहीं पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। तो हमारे जो टॉप नॉच कैंडिडेट्स हैं, जो टॉप थ्री, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके हमारी स्थिरल से बिठाएगी। लेकिन हमें वोट करने का जो पाकिस्तानी नुमाइंदे हैं उनको फायदा ये होगा कि कल अगर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी का कोई मसला लेके हमारी जमात के पास जाते हैं कि आपको हमने मैंडेट दिलाया, तो हम ये साबित कर सकें कि कितने पाकिस्तानियों ने हमें वोट किया था। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप परसों रोस्त यानी कि जब आप वोट दे रहे हैं पार्टी इत्मीनान को वोट जरूर दें, लेकिन पाकिस्तानी उम्मीदवार के नाम के आगे क्रॉस जरूर लगाएं ताकि आपका वोट बतौर पाकिस्तानी भी काउंट हो। जी
जी अली, आप कोई बात करना चाहें, सवाल करना चाहें?
जी मैं बिल्कुल पूछना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम कि जब पहले आप लोगों की बात हो रही थी और बीच में कट गया था, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा मैनिफेस्टो के हवाले से मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया हूँ, क्योंकि अभी जो बात कर रहे थे जुबैर साहब के काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी ये करवा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे थोड़ी सी बात समझ आती है, थोड़ा सा मैं आपसे शायद हो सकता है जुबैर साहब थोड़ा सा तल्ख सवाल हो, मगर क्योंकि मुझे मैंने बीच में ज्वाइन किया है, तो क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज़ और इस तरह की एक्टिविटीज़ ये पॉलिटिकल जमातों की वो उसकी कह लें कि मेन स्ट्रीम लाइन नहीं होती, बल्कि इसके लिए तो और भी कल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपना मैनिफेस्टो के हवाले से बताएं कि आप जब लोगों के पास अपना मैसेज लेके जाते हैं तो क्या सिर्फ उसमें आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी सिर्फ फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एज ए माइनॉरिटी तो आप ज़रूर चीज़ों को कर सकते हैं कि जी हम माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे रिगार्डलेस ऑफ एनी कंट्री और एनी जो है वो रिलीजन और इस तरह की चीज़ें, तो किस तरह आप लोगों को कन्विंस करते हैं, क्योंकि सिर्फ आपने पाकिस्तानियों से तो वोट नहीं मांगने, आपने अपने इर्द गिर्द जो नेबर्स हैं वो स्वीडिश भी हो सकते हैं, वो किसी और कंट्री से भी हो सकते हैं, वो किसी और मज़हब से भी हो सकते हैं, तो आप कैसे अपने मैनिफेस्टो को, या आप अपना अगर मैनिफेस्टो बताएं कि आपकी पार्टी क्रिएशन के पीछे बेसिक जो है वो क्या निकात हैं?
ये देखें, जहाँ तक आपने तल्ख सवाल की बात की तो मैं तो इसको जो है बड़ा पॉजिटिव लूंगा इस सवाल को, और ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ तक बात रही कल्चरल इवेंट की या दूसरे प्रोग्राम की मैंने बात की, तो वो राजा साहब के उस सवाल का जवाब था कि हमने जो फिल्म लगाई थी उसका मकसद क्या था। तो बेसिकली जब आप कम्युनिटी में इंगेज होते हो और कम्युनिटी आप पे ट्रस्ट करती है, आपके पीछे एक आप समझें कि एक बड़ी तादाद कम्युनिटी की मौजूद होती है, तभी आप स्टेप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं किसी सियासी मैदान में कि आपके पीछे एक जम्मे गफीर है और आगे चल के ये जम्मे गफीर जो है एक बड़े काफिले की शक्ल इख्तियार करेगा। फिर रही बात हमारे मैनिफेस्टो की, तो हमारा मैनिफेस्टो हमने कभी नहीं कहा और ना ही मैंने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम कल्चरल इवेंट करवाएंगे। इससे पहले भी राजा साहब के साथ मैनिफेस्टो के हवाले से हमारा इंटरव्यू हुआ है और मैंने काफी तफसील में बताया है। तो हम बेसिकली सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी को फोकस नहीं कर रहे, और मैंने यही कहा था कि हमारा जो इलेक्शन ऑफिस खुला हुआ है वो वेलकम करता है तमाम उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी को। अब वो ख्वाह उनका ताल्लुक भारत से हो, ख्वाह बांग्लादेश से हो, ख्वाह अफगानिस्तान से हो, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जहाँ पर उर्दू बोली और समझी जाती है, ख्वाह वो उन ममालिक की नेशनल जबान हो या ना हो। तो इसके अलावा यहाँ पर सिख कम्युनिटी है, उनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा हिंदू कम्युनिटी है, उनसे मुलाकात हुई। ये सारे माइनॉरिटीज में आते हैं। पार्टी इतन्यांस के मैनिफेस्टो की बात करें तो वहां पर अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं पार्टी इतन्यांस डॉट एससी पे, तो उस पर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि हम फकत इस्लामोफोबिया नहीं, अफ्रोफोबिया, एंटी सेमिटिज्म, क्रिस्तनोफोबिया, इन तमाम जो है मामला के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। और हमारे जो चार बुनियादी जो नुकात हैं हमारी पार्टी के, उसमें जो सबसे अहम नुकात वो ये है कि आपको पता है कि अभी स्कैंडल चला था कि स्वीडन बच्चों को किडनैप कर लेता है। वो बेसिकली किडनैपिंग नहीं थी, वो यहाँ पर एलएवयू जो है एक कानून है एलवीयू का, वो ये है कि जब बच्चों को घर के अंदर आप मिसबिहेव करते हैं या उनको उनके हकूक नहीं मिलते तो सोशल सर्विसेज बच्चों को छीन लेती है। वो शायद डेनमार्क में भी आप उससे आगाह होंगे उस कानून से। लेकिन वहां पर, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब कोई नई फैमिली स्वीडन में आती है तो उनको मालूमात नहीं मुयसर की जाती कि यहाँ पर बच्चों के हकूक क्या हैं। अगर उनको थोड़ी सी दांत डपट दे भी दी जाती है, घर पे बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी वजूहत की बिना पर खाना मौजूद नहीं होता और बच्चा स्कूल में जाके फकत ये कहता है कि मैं भूखा हूँ, तो उस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती हैं। और इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि एक वक्त का खाना बच्चे को गलती से नहीं मिला तो माँ से जो है उसको जुदा कर दिया गया और फिर उस माँ ने खुदकुशी कर ली। ये यहाँ पर कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसके बाद हमारा जो है वो मैनिफेस्टो ये कहता है कि इस कानून के अंदर रिकंसिलिएशन की जाए, लोगों को अपील का हक दिया जाए, जिन लोगों के पास माली जो है वो पोजीशन अच्छी नहीं जिनकी, उनको माली मामनत फराहम की जाए, और जो फोस्टर हाउसेस जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है अगर वो प्राइवेट हैं तो उनको कारोबारी लिहाज से जो है वो अपना कारोबार चमकाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, वहां पर ऐसी सर्विसेज दी जाए या बच्चों को ऐसा कल्चर दिया जाए जो उनके अपने बैकग्राउंड यानी कि उनकी अपनी सकाफत और मजहब के हवाले से उनकी वहां पर परवरिश की जाए। तो ये हमारा मेन जो है पॉइंट ये है हमारा पार्टी का। फिर उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा मसला है। इंटीग्रेशन का मसला ये है कि यहाँ पर आप इंटीग्रेट होते होते आपकी जिंदगी के 7 से 8 साल यूं ही निकल जाते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में ही बंदा फंस के रह जाता है। डे फर्स्ट से जब आपको माइग्रेशन वर्किट यानी इमिग्रेशन ऑफिस से लेटर मिलता है बतौर असाइलम सीकर, तो होता यह है कि आपको स्वीडिश जबान में एक फाइल थमा दी जाती है जिसके अंदर तमाम तर मालूमात स्वीडिश में या दूसरी अरबी जबान में होती है। तो जो लोग जबानों को नहीं समझते उनको पता नहीं होता है कि मैं किस इदारे के पास जाके क्या मदद लूंगा। तो यहाँ पर टैक्स ऑफिस के अंदर भी उसको खुद रजिस्टर कराना है, वो खुद इस मुल्क में नया है। यहाँ पर उसको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी फॉरसेकिंग कासा में खुद को रजिस्टर कराना है, तो वो खुद कराए। यहाँ पर वर्क अनएम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो आपकी है आरबीएस फॉर मेडलिंग, उसमें भी उसको खुद रजिस्टर होना है। तो कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी तरीके से एक फैमिली या कोई फर्द वाहिद इस माशरे में इंटीग्रेट कर सके। फिर यहाँ पर जबान का मामला आता है। जबान फ्री में सिखाई जाती है लेकिन जबान सीखते सीखते लोगों की उम्रें निकल जाती हैं, ना उनको कोई टेक्निकल कोर्स करवाया जाता है, ना ही जो है वो जो रिसोर्सेस मौजूद हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान से मास्टर डिग्री लेके आता है किसी फील्ड में, तो वो यहाँ पर आपको सफाई करता हुआ ही नजर आएगा। वजह यह है कि वो एक फ्री रिसोर्स है इस गवर्नमेंट के लिए, उसके स्किल्स को यूज करने के बजाय उसको सफाई के कामों पे लगा दिया जाता है, बजाय इसके कि उसको 6 माह से लेके 1 साल का कोई कोर्स करवाया जाए जिस फील्ड का वो बंदा है, ताकि वो उस फील्ड के अंदर मौजूद हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो ब्रिस्ट यहाँ पर है, वो जो कमी है वो हमारे पास टीचर्स की है। तो अगर कोई मास्टर डिग्री रखने वाला बंदा है उसको 6 माह से 1 साल तक अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो अच्छा टीचर बन के भी सामने आ सकता है। तो ये तमाम तर हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। काफी एक तवील हमारा मैनिफेस्टो है जिसके अंदर बारीकियों से तमाम चीजें फॉरनर्स की मदद के लिए लिखी गई हैं। फिर यहाँ पर तीसरा जो सबसे बड़ा अहम मसला आता है वो घर तलाश करने का है। पूरे स्वीडन में घर मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास क्यू सिस्टम होता है तो लोग जो है वो अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल फकत एक घर ढूंढने में, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने में निकाल देते हैं। तो हुकूमत घर बनाए, हमारी ये डिमांड है, और घर भी इस तरीके से बनाए कि घरों पे जो टैक्स है वो मतलब किरायों के अंदर जो टैक्स ले रहे हैं लोगों से, उनकी भी छूट की जाए। इस तरह का मतलब जिक्र हमारे मैनिफेस्टो में मौजूद है। और जो सबसे अहम हमारा जो मौजू है वो हमारे पार्टी की बुनियाद भी समझा जाता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस्लामोफोबिया, अफ्रोफोबिया, एंटीसिमिज्म, क्रिस्टोफोबिया। तो ये तमाम तरह ऐसी चीजें हैं जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा हैं, और हमारा पार्टी प्रोग्राम बड़ा तवील और बड़ा कंसाइज सा है, जिसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि पार्टी अथनियांस किस लिए वजूद में आई है।
जी अली, काफ़ी तफसील से उन्होंने जवाब दिया। आप कोई सवाल रेज करना चाहेंगे?
नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के हवाले से काफ़ी तफसील से बता दिया है। तो मेरी तो नेक ख्वाहिशात हैं ज़ुबैर साहब के लिए, इनकी पार्टी के लिए और इनकी सारी टीम के लिए कि जितनी भी नशस्तों के ऊपर ये उम्मीदवार हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये कामयाब हों, और अपनी कम्युनिटी और इसके साथ साथ जो फॉरेनर कम्युनिटी है उनके जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ये कोशिश करें।
जुबैर भाई, आखिरी सवाल, 14 अगस्त भी जो है वो करीब आ रहा है, आप लोग भी तकरीबात मनाते रहते हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो 14
देखिए,
अगस्त के हवाले से आपने क्या जो चाकआउट किया है?
14 अगस्त के हवाले से हमारा एज सच कोई प्लान नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम एम्बेसी में इनवाइटेड होते हैं, तो पाकिस्तान हाउस में जो तकरीब होगी वहाँ हम जरूर तशरीफ ले जाएंगे यहाँ से वफ की शक्ल में। तो हमारा जो है वो ये तीसरा साल है, आप समझे, कोरोना वबा में हमने यही किया था कि हम अपना 14 अगस्त पाकिस्तान हाउस में मनाते थे। इसके अलावा यहाँ पर चंद एक फॉरेनिंग हैं जो ये काम करती हैं, तो ये मुनासिब नहीं होता कि एक ही शहर में कोई 3-4 जो है वो प्रोग्राम किए जाएं। जब कोई और फॉरेनिंग इस तरह का प्रोग्राम कर रही होती, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई प्रोग्राम ना रखें ताकि अवाम बटे ना, किसी एक प्रोग्राम में शरीक हो, ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के हवाले से मालूमात भी मिले और कम्युनिटी एक साथ जेलिन हो सके।
ज़ुबैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमारे सामान के साथ शेयर किया। आखिर में कोई कम्युनिटी को पैगाम देना चाहे तो टाइम हाज़िर है।
सर, कम्युनिटी को बस यही पैगाम है, और हमेशा हम यही कहते आए हैं कि आप वोट जरूर कास्ट करें। मतलब ये है कि लोगों को अपने वोट की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। हम ये मसला इस वक्त नहीं है कि हम किसको वोट दें, मसला सबसे बड़ा ये वोट वोट का है कि लोगों को घर में अगर वाल नेमदन से कोई लेटर आता भी है तो वो उसको रिकलाम समझ के फेंक देते हैं, जबकि उस वाल नेमदन यानी इलेक्शन कमीशन के लेटर में ये लिखा होता है कि आप किस किस कैटेगरी में वोट दे सकते हैं। अपना वोट उनको कास्ट करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बन सके इस दयारे घेर में। जी,
आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज,
आपकी आवाज।